ये आकाशवाणी है। अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। दोनों नेताओं की बातचीत भारत और श्रीलंका के बीच निकटतम द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित रही। दोनों नेताओं ने साझा भविष्य के लिए मजबूत भागीदारी के संयुक्त दृष्टिकोण पर प्रतिबद्धता जताई। श्री मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। दोनों नेताओं ने सामपुर बिजली परियोजना के शिलान्यास समारोह में ऑनलाइन भागीदारी की। ये परियोजना एनटीपीसी और सिलोन बिजली बोर्ड संयुक्त रूप से पूरी करेंगे। भारत दाम्बुला में तापमान नियंत्रित कृषि गोदाम स्थापित करने में मदद करेगा। इसके अलावा भारत 5,000 धार्मिक संस्थानों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने में भी मदद करेगा। इससे श्रीलंका में 25 मेगावाट बिजली की वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम कोलंबो में भारतीय शांति रक्षक बल स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। श्री मोदी ने संयुक्त बयान में कहा कि भारत पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर अभियान पर जोर देता है। श्री मोदी ने मछुआरों के मुद्दे के समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को कहा और मछुआरों की तथा जब्त नौकाओं की वापसी में तेजी लाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन में श्रीलंका की तमिल राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त श्रीलंका के भीतर तमिल समुदाय के लिए समानता, गरिमा और न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। रात में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस यात्रा को महत्वपूर्ण और परिणामोन्मुखी बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे इस सप्ताह संसद ने पारित किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह कानून बन गया है। गुरुवार को लोकसभा में इस विधेयक को पारित किया गया था, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन और 232 ने इसका विरोध किया था। शुक्रवार को राज्यसभा में इस विधेयक को पारित किया गया, जिसमें 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने इसके विरोध में मतदान किया। राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ निरस्त विधेयक 2025 को भी मंजूरी दे दी है। रेल तथा सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में आधुनिक पंबन पुल का उद्घाटन देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री आज इस पुल का उद्घाटन करेंगे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह समुद्र के पानी में निर्मित पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों से अपील की है कि वे हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। कल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि अगले चैत्र नवरात्र तक छत्तीसगढ़ से लाल आतंक समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला और शिल्प को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए आयोजित किए गए इस बस्तर पंडुम की सराहना करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष बस्तर पंडुम में देश के हर आदिवासी जिले के कलाकार शामिल होंगे। इस बीच तेलंगाना में भद्राद्री कोठा गुडेम जिले में 20 महिलाओं सहित 86 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रूपये प्रदान किए गए। वहीं आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में माओवादी पार्टी के 11 लोगों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को अतिरिक्त 1,280 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि मंजूर की है। गृह मंत्रालय ने कल एक बयान में कहा कि सरकार ने आपदाओं के बाद इन राज्यों में तत्काल मंत्रालय स्तर की केंद्रीय टीमों को भेजा था। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रत्न एवं आभूषण निर्यात 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। आईपीएल T20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 50 रनों से हरा दिया। जवाब में पंजाब किंग्स 9 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी। आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना गुजरात टाइटन से हैदराबाद में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।